अल्लाह के नबी के दौर का एक बड़ा प्यारा वाक्य आपने भी सुना होगा। हज़रत उसैद बिन खुदैर थे, सूरह तौबा पढ़ रहे थे, कुछ जगह आते सूरह काफ भी पढ़ रहे थे। उनके पास उनका घोड़ा था और छोटे छोटे तो घर होते थे वहाँ, तो वो जब कुरान पढ़ते ना तो घोड़ा बिदकने लगता। उनका बच्चा भी साथ ही कहीं सो रहा था, डर था कि घोड़े के पाँव बच्चे पे ना लग जाए। तिलावत छोड़ते तो घोड़ा भी रुक जाता, फिर जब घोड़ा सही हो जाता तो दोबारा 3 दफ़ा ऐसा हुआ। इस डर से कि कहीं बच्चे को तकलीफ ना हो जाए तिलावत छोड़ दी। जब उठे तो देखा कि आसमान से रोशनी एक छतरी की तरह से नजर आ रही है, यानी नूर का एक हैवला दिखा। अनयूजुअल बात थी। नबी सल्लम के पास गए जब, तो आपके सामने सारा वाक्य बता दिया। आपने फरमाया, इब्ने खुदैर, तुम पढ़ते रहते, तिलावत बंद ना करते तो बेहतर था। अल्लाह के नबी, मुझे डर हुआ कि वो मेरे बच्चे, बच्चे का नाम याहिया था, मेरे बच्चे याहिया को कुचल ना दे, क्योंकि वो घोड़े के बिल्कुल करीब था। मैंने सर ऊपर उठाया और फिर याहिया की तरफ गया, तो मैंने देखा कि एक छतरी नुमा चीज़ थी जिसमें छोटे 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 रोशन चिराग थे, जैसे ये शेंगलेर्स होते हैं। फिर जब बाहर आया तो कुछ भी नहीं था। आपने कहा, इब्ने खुज़ैर, तुम्हें पता है वो क्या चीज़ थी? कहा, नहीं। फरमाए, वो फरिश्ते थे जो तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए करीब से करीब हो रहे थे। अगर तुम रात भर पढ़ते रहते तो सुबह तक और लोग भी उन्हें देखते, यानी ये वो फरिश्ते थे जो लोगों से छुपते नहीं हैं। जी, आप पढ़ना चाहें तो यह हदीस सही बुखारी में मौजूद है, 5018 नंबर की हदीस है, और सही मुस्लिम में भी है, आप वहाँ भी देख लीजिए, 796। तो क्या पता चला कि फरिश्तों को ऐसे मौक़ों पे महसूस किया करें। अच्छी तिलावत अपनी जगह रखती है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये तो आज भी आसान है, अच्छी आवाज़ में बच्चों को कॉम्पीट कराया करें। अब पेरेंटिंग पे भी थोड़ी अगर इसमें बात करें ना, तो बच्चों के मुकाबले कराया करें, और कंपैरिजन तो ना करें लेकिन कम्पीट कराएं। एक अच्छा पढ़े, दूसरा पढ़े, ये सूरत तुम पढ़ना, वो पढ़ना। बहरहाल, अगला ताल्लुक़ ईमान वालों के साथ फरिश्तों का क्या है कि फरिश्ते ईमान वालों से मुसाफहा करते हैं, शेक हैंड, हाथ मिलाते हैं। और ये कब होता है? जब भी कहीं कुरान की तिलावत होती है, दीनी तालीम, जिक्र, अस्कार, कोई ऐसा अच्छा काम हो रहा होता है ना, तो फरिश्ते ईमान वालों के बिल्कुल करीब से करीब आने लगते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ फरामीन ऐसे हैं जिससे पता चलता है कि अगर इंसान ईमान और तकवा की आला कैफियत पे पहुंच जाए, जो वाकई अपने दौर में तो अंबिया कराम को मिलती थी, लेकिन आज भी कुछ लोग अगर एहसान के दर्जे पे पहुंच जाते हैं तो फिर अल्लाह ताला उनको भी अता करते हैं। मेरा गुमान है कि आप सब ने हज़रत हंजला का किस्सा पढ़ा और सुना होगा। हज़रत हंजला असदी उनका नाम था, कातिबीन वही में से थे। एक रात क्या हुआ कि अबू बकर सिद्दीक मिले और हंजला उनसे कहने लगे, आपने पूछा क्या हाल है हंजला, कहने लगे हंजला तो मुनाफिक हो गए, नाफक हंजला, नाफक हंजला। अबू बकर ने कहा, सुभान अल्लाह, आप मुनाफिक हैं, आप क्या कह रहे हैं? तो कहा कि अल्लाह के नबी की महफिल में जो दिल की कैफियत होती है जब आप जन्नत और जहन्नुम का तذکرہ फरमाते हैं, ऐसे लग रहा था हम जन्नत को अपनी आंखों से देख रहे हैं, और जब हम उस महफिल से निकल कर अपने बीवी बच्चों में जाते हैं तो अक्सर बातें हम भूल जाते हैं, यानी हम दुनिया में मशगूल हो जाते हैं और आखिरत को भूल जाते हैं। अबू बकर कहेंगे, अल्लाह की कसम, हमारी भी तो यही हालत होती है। तो इसका अंदर यह है कि फिर हमारे अंदर निफाक है। ज़रा सा सोचिए, दुनिया के बेहतरीन लोग अपने बारे में निफाक का शायबा रखते हैं, हम क्या सोचते हैं? और आपको पता है, ये वही हंजल है जिनकी नई नवेली दुल्हन थी और उसको छोड़कर मैदाने जंग में गए और शहीद हो गए, ओहद की जंग। और जब जंग ख़त्म हुई, जख्मी थे, एक अबतरी थी, तो एक औरत चादर में लिपटी हुई शर्म और हया के साथ आती है और वो कहती है कि मैं सिर्फ ये बताने आई हूँ कि हंजला जब घर से आए थे इधर तो गुसल की हाजत में थे, जुम्बी थे, इतना वक्त ही ज़ाया किया अपने आप को साफ कर ले। तो मुझे डर हुआ कि कहीं आप उनको बगैर गुस्ल दिए ना दफनाए, क्योंकि शुहदा को गुस्ल नहीं देने की जरूरत होती। तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया था, मैं देख रहा हूँ कि फरिश्ते हंजला को गुस्ल दे रहे हैं, और कहते हैं कि जब इनकी डेड बॉडी उठाई गई तो उसमें से पानी गिर रहा था। ये वो लोग थे, मैं कहती हूँ हम किधर खड़े हैं, अपने आप को सोचिए। दोनों चले गए अल्लाह के नबी के पास। अल्लाह के नबी, मेरे अंदर तो निफाक है, ये है वो है, वही सारी बात जो कही थी वो इन्होंने भी कह दी। अब नबी के अल्फाज सुनिए इनको, हम होते तो डरा देते, आज तो दिनदर है ही वो जो डराए, और चंद फतवे भी दे दे के मुश्किल है आपका जन्नत में जाना, और वैसे कोई चांसेस कोई नहीं है, आपके देखते हैं शायद तुक्का लग गया। फिर हम कहते नहीं ना, आप हमारी दुआ कीजिएगा, हम आपको खाना खिलाते हैं, हम आपके कपड़े सही कर देंगे, हम ये कर, आप बस हमारे साथ रहिए। नऊज़ु बिल्ला, याद रखिए उस दर में किसी की नहीं चलती। आपने फरमाया वल्लजी नफसी भी यदि, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, इल्लौ तदुमून अला मा तकुनून इंदी, अगर तुम्हारी वही कैफियत रहती जो तुम्हारी मेरे सामने रहती है, और तुम फिजिक्री तुम इसी यानी ऐसी हालत में रहते जो मेरी कैफियत में होती है, तो फरिश्ते तुम्हारे बिस्तरों और तुम्हारे रास्तों पर आकर तुमसे मुसाफा करते, शेक हैंड करते। और हंजला, ये तो वक्त वक्त की बात है, यानी कभी कैसा वक्त होता है कभी कैसे। 3 दफ़ा आपने ये बात फरमाई, साअतन व साअतन व साअतन। और एक रिवायत में क्या आता है, लो अन्नकुम तकुनून कमा तकुनून इंदी लअज़ल्लतकुमुल मलाइकतु बिअज्निहतिहा, तो फरिश्ते तुम्हें अपने परों से साया देते। ये तिर्मिज़ी की रिवायत है 1994। तो फिर हम अपनी लिस्ट पे आ जाते हैं फरिश्तों का। आज हमने क्या क्या पॉइंट अभी तक देखे, इल्म की महफिलों में होते हैं, और बोलिए मुझे ज़रा याद करा देंगे। कुरान की तिलावत के वक्त आते हैं, और जी आगे चलिए, फरिश्ते सुबह शाम हमारे पास आते हैं। अल्लाह सुबहाना ताला ने फरिश्तों की ड्यूटियां लगाई हुई हैं। अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया, यतआक़बू नफीकुम मलाइकतुम बिल्लैली व मलाइकतुम बिन्नहार व यजतमेऊ नफी सलातिल फजरी व सलातिल असरी सुम्म यारुजुल्लज़ी नबातु फीकुम फ़यस अलहुम वहुआलमु बिहिम कई फ़तरक तुम इबादी फ़यकुलू न तरक ना हम वातई ना हम वहुम युसलून। बुखारी की रिवायत है, 555 नंबर है, आप नोट करना चाहें तो कर लें। रात के फरिश्तों और दिन के फरिश्तों की तुम्हारे पास आमदोरफ्त मुसलसल जारी रहती है, और फजर और असर की नमाजों में और रात और दिन के फरिश्तों का इकट्ठ होता है। फिर तुम्हारे पास रात भर रहने वाले फरिश्ते जब ऊपर चढ़ते हैं तो अल्लाह ताला पूछते हैं, हालांकि वो इनसे बहुत ज़्यादा अपने बंदों के मुतल्लिक जानते हैं, कि मेरे बंदों को तुम किस हाल में छोड़कर आए हो। वो जवाब देते हैं, हमने जब इन्हें छोड़ा तो वो फजर की नमाज़ पढ़ रहे थे, और जब इनके पास गए तब भी वो असर की नमाज़ पढ़ रहे थे। अब ये गवाही फरिश्तों की किसके हक में मिलेगी आपको पता, जो अव्वल वक्त पे नमाज पढ़ रहे थे। बेनमाजी इस गवाही से महरूम रहते हैं। हमारे कल्चर में तो 6-6 अजानें होती हैं। नहीं, अभी हमारी नहीं हुई, ये वहाबियों की नमाज है, ये अहले हदीसों की है, ये फलानों की, अभी हमारी नहीं हुई। अव्वल वक्त पे नमाज पढ़िए, जो पहला वक्त नमाज का हो गया उस पे नमाज पढ़ लें। तो क्या पता चला कि किरामन कातबीन जो हमारे अमाल लिखते हैं इस सूरत में, वो क्या होते हैं के हमारे उस अमल को लिख लेते हैं। आप ज़रा सा बात करें, हमारे घरों में फजर के वक्त क्या माहौल होता जी, क्या दिन ब दिन वक्त के गुजरने के साथ साथ, पहले तो टीवी की नशरियात थी ना, फिर वीसीआर आ गया और भी जाग लेते हैं। सिनेमे का भी खास ही वक्त ही होता था, मुझे तो याद नहीं है कि क्या, लेकिन एक शो होता होगा 11-12, 1 बजे 2 ख़त्म। आप सब ने अपनी पिछली 10-20 साल जिंदगी में टीवी को कितना आम होते देखा, 4 बजे से शायद रात 10-11 बजे पीटी भी नशरियात थी खत्म। 10:30 बजे कुछ भी नहीं था, अंधेरे थे, सो जाओ चुप करके। ये वो वक्त है जब हम बड़े हुए थे। फिर वीसीआर किसी के घर में आए तो छुपा के रखते थे अलमारियों में, बच्चे सो जाएंगे फिर वीसीआर पे कोई इंडियन फिल्म लगाएंगे। चले वो भी अम्मा अब्बा के कंट्रोल में थी। वीसीआर गया, उसके बाद क्या हुआ, वो सब छोड़कर आज क्या है, आप सिर्फ अपने बच्चे के फोन की जाकर हिस्ट्री चेक कर लें, सिर्फ 3 लफ्ज़ जहां आपका बच्चा लिखेगा पूरी दुनिया का फिक्शन उसके सामने आ जाएगा। गंदगी, बेहूदगी। आजकल तो मैंने वो मौजू रखे नहीं है ना, इधर अमेरिका जो हमारा लास्ट ट्रिप अभी गुजरा है ये फ्यू मंथ्स अगो, तो पूरा जो ट्रिप था ना उसके मेन थीम में ये चीज़ थी। कई लेक्चर हुए थे सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल, कहीं गलत इस्तेमाल, कहीं बच्चे और सोशल मीडिया। अब फोन तो आप उनसे ले नहीं सकते, उनको तो iPhone 16 Pro Max का नाम पता है, आपको तो ये भी नहीं पता। उनको 1 TB का मतलब पता है, आपको नहीं पता। इतना सा बच्चा 10 साल का भी नहीं है मुझे लगता, 9 का, तो कहता है मेरे लिए Mac 16 लेके आना। मैंने कहा आपको किसने ये सारी बातें बताई है, कह रहा मुझे पता। तो मैंने कहा कितने का आता है ये, उसको पैसे भी बताते। तो मैंने कहा आपके कितने पैसे हैं, नहीं मैं आपको अपने अब्बू से लेके दे दूंगा, आप मेरे लिए वो लेके आइएगा। आज की दुनिया, 3 साल का बच्चा, फर्स्ट टाइम, आप बहुत साल पहले हो गए, मुझे जब भी कभी मेरे पास फोन आया तब भी बताओ, इतने से बच्चे से मैंने सीखा था कि उंगली इधर लगाते हैं, उस बच्चे ने ऐसे किया था फोन पे। और आज आप अपना फोन दे, आपके बच्चे सारा कुछ छोड़ छाड़ के ना एक रेड कलर का साइन ढूंढते हैं जी, आपके बच्चे। आप इन बच्चों से नहीं ले सकते, लेकिन जो बात अभी कर रहे हैं ना, आज आपका बच्चा अपने बेडरूम के अंदर भी अगवा हो जाता है। पहले तो कुछ सिनेमा घरों में जाकर बेहूदगी देखें, या कोई वीसीआर पे देखें, या कोई किसी अल्लाह रहम करे कोठे पे जाते हैं ना बेहूदगी, आज इंडोर घर के अंदर जिना हो रहा। दुनिया उससे बहुत आगे जा चुकी जो आप और मैं सोचते हैं, इसलिए बच्चों का जहन पाक रखे। फोन मेरे भी पास रखे हैं, फोन सारा दिन चलते हैं, मेरी सोच गंदी हो जाए तो ये गंदे हो जाएंगे, ये तो एक तख्ती है, एक स्याही है, अगर मेरी सोच साफ हो गई तो वो भी साफ हो जाएंगे। तो बच्चों का तज़किया और तरबियत, आंखों की फल। आज कितने शादीशुदा जोड़े परेशान हैं आपको पता, बुढ़े बुढ़े जो सारी जिंदगी गुजारा कर ही रहे थे ना, उनकी जिंदगियां भी इसका जी रहे ना, बुढ़ापे में वो गन देख रहे हैं मर्द जो के सारी जिंदगी ना देखा। तो असर तो फिर मियाँ बीवी के ताल्लुक पे आएगा ना। तो अपने सोशल मीडिया को पाक करने के लिए अपने इस मीडिया को साफ करने की जरूरत है। आगे चलते हैं, फरिश्तों का इंसानों के साथ यानी ईमान वालों के साथ ताल्लुक, ख्वाब में फरिश्तों का दीदार होता है। आप कहेंगे इतनी बड़ी बात, तो मैं अपने से तो कोई बात नहीं करती अल्हम्दुलिल्लाह, बताने में थोड़ा बहुत कुछ एक्सप्लेन कर दूं तो कर दूं, वरना मुझे तो यही काफ़ी है कि मैं अल्लाह की बात या रसूल की बात कर दूं। तो हदीस सुन लीजिए, अब्दुल्ला बिन उमर से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में लोग ख्वाब देखते और इसे नबी सल्लम से बयान करते, आपकी हस्बे मशीयत और आप हस्बे मशीयत इलाही इनकी ताबीर फरमाते। मैं इस वक्त नौ उम्र था और मेरा घर मस्जिद में ही था, और ये मेरी शादी से पहले की बात है। मैंने अपने दिल में सोचा अगर तुझ में कोई खैर होती तो तू भी इन लोगों की तरह ख्वाब देखता। चुनाचे जब मैं एक रात लेटा तो मैंने कहा, ए अल्लाह अगर तू मेरे अंदर कोई खैर और भलाई जानता है तो मुझे भी कोई ख्वाब दिखा। अच्छा हम लोग भी कभी कभी करते हैं ना ऐसा, अच्छा लगे ये बात होनी है ना तो मुझे ख्वाब में दिख जाए। खैर अल्लाह के साथ आपका ताल्लुक हो सकता है, जो भी हो। मैं इसी हाल में सो गया और देखा कि मेरे पास दो फरिश्ते आए हैं, इनमें से हर एक के हाथ में लोहे का हथौड़ा था, वो मुझे जहन्नुम की तरफ ले चले। जबकि मैं इन दोनों फरिश्तों के दरमियान था और मारे खौफ के अल्लाह से दुआ करता जा रहा था कि अल्लाह मैं जहन्नुम से तेरी पनाह मांगता हूँ। फिर मुझे दिखाया गया कि एक और फरिश्ता मुझसे मुलाकात करता है और कहता है कि डरो नहीं, तुम कितने अच्छे आदमी हो, अगर तुम नमाज और ज़्यादा पढ़ो, फिर वो मुझे लेकर चले और जहन्नुम के किनारे ले जाकर मुझे खड़ा कर दिया। मैंने देखा कि जहन्नुम एक गोल कुएं की तरह है और कुएं के मटकों की तरह इसके भी मटके यानी डोल थे, और हर दो मटकों के दरमियान एक फरिश्ता था जिसके हाथ में लोहे का एक हथौड़ा था। मैंने जहन्नुम में कुछ लोग देखे जिन्हें जंजीरों में बांध कर उल्टे मुंह लटका दिया गया था। इनमें बाज़ कुरैशी लोग थे जिन्हें मैंने पहचान लिया। फिर ये फरिश्ते मुझे दाईं जानिब लेकर चल दिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि मैंने ये ख्वाबात में अपनी बहन हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो नबी सल्लम की ज़ौजे मुख्तरमा थी, उनको सुनाया। उन्होंने आगे जब अल्लाह के नबी से इसका जिक्र किया तो आपने क्या फरमाया? इन्ना अब्दुल्ला अब्दुल्ला रजुलुन सालेहुन, यकीनन अब्दुल्ला एक नेक आदमी है, काश ये तहज्जुद और दीगर नवाफिल का एहतमाम करे। हज़रत नाफे, जो अब्दुल्ला बिन उमर के ग़ुलाम थे, बयान करते हैं कि इस वाक़े के बाद अब्दुल्ला ने नवाफिल बकसरत पढ़ना शुरू कर दिया। ये बुखारी की रिवायत है, आप ख़ुद भी जाके पढ़ लीजिएगा, 7028 और 7029 नंबर के, और सही मुस्लिम में भी ये रिवायत मौजूद है, 2479, और वहाँ सालिम से है। और वो कहते हैं कि फिर उसके बाद अब्दुल्ला बिन उमर ने रात की नींद कम कर दी। हम होते हम और सोते कि ख्वाब में फरिश्ते दिखते हैं। आप देखिए कैसा प्यारा वो दौर था ना, कि अल्लाह के नबी से जाके फौरन पूछ लेते थे, तो क्या पता चला कि अगर अल्लाह चाहे तो फरिश्ते ख्वाब में नज़र आ सकते हैं। और अगली बात जो बहुत खूबसूरत है, फरिश्ते अहले ईमान को बशारते देते हैं, खुशखबरियाँ देते हैं, बुशरा। कुरान की कोई आयत याद आ रही है इसके साथ? इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। इसमें भी एक वाक़िया आता है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान किया कि एक शख्स किसी दूसरे इलाके में अपने किसी दीनी भाई को मिलने के लिए जा रहा था। अल्लाह ने रास्ते में एक फरिश्ता बिठा दिया। जब वो वहाँ से गुजरा तो कहा, कहाँ जा रहे हो? कहा, मैं तो फलां बस्ती में अपने एक भाई से मुलाकात के लिए जा रहा हूँ। कहा, क्यों? कहा, मुझे उससे अल्लाह के लिए मोहब्बत है। कहा, सिर्फ उसके मिलने के लिए जा रहे हो? कहा, हाँ। कहा, अच्छा, तो फिर याद रखो कि अल्लाह ने मुझे इसलिए भेजा है कि तुम्हें बता दूँ कि जिस तरह तुम उससे अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हो, अल्लाह ताला भी तुमसे वैसे ही मोहब्बत करते हैं। ये मुस्लिम की रिवायत है, 2567 नंबर की। इसी तरह एक मरतबा अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, नबी सल्लम के पास जिब्राइल आए और फरमाया, अल्लाह के रसूल, ये खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपके पास एक बर्तन लेकर आ रही हैं जिसमें सालन या खाना पानी है। ये जब आपके पास आए तो आप इन्हें इनके परवरदिगार और मेरी तरफ से सलाम कीजिए और इन्हें बशारत दीजिए कि इनके लिए जन्नत में एक खौलदार मोती का महल है जिसमें ना शोर व गुल होगा और ना ही थकावट। बुखारी की रिवायत है, 3820। आप सारी सिस्टर्स जो मैरिड हैं, इस हदीस पे गौर कीजिए। क्या उम्र थी हज़रत खदीजा की जब नबी को नबूवत मिली? 55 साल की थी। और ये वाक़या कब का है? जब आप गारे हिरा में जाकर इबादत करते थे। और गारे हिरा कितनी आज आप लोग ज़ियारात के नाम पे तो जाते हैं ना, अब वहाँ सुना है लिफ्ट लगाने लगे हैं, कुछ ऐसा करेंगे, कुछ वो करेंगे। वो उस वक़्त जाकर नबी को वहाँ खाना देती थी, तो अपने शौहरों की टेक केयर किया करें। अच्छी बीवियाँ सिर्फ पढ़ती पढ़ाती नहीं रहती हर वक़्त, और घर वालों को कहती हैं खा लेना जाके खुद ही। वैसे आप सऊदी अरब वाले तो बड़े नेक होंगी, बीवियाँ नेक पाक है ना, पता नहीं क्यों यहाँ तो मेरा दिल ही नहीं करता दर्स देने को। मैं कहती इधर ज़रूरत ही कोई नहीं, सब इतने अच्छे लोग हैं, दर तो वहाँ दे जा खराबियाँ। लेकिन फिर वही बात है, फज़क्किर नज़िक्र रतन फ़ौल मोमिनीन। तो याद रखिएगा कि अल्लाह सुबहान तला ने आपके मेरे लिए ये सारा कुछ रखा हुआ है, इसमें जितना ज़्यादा गौर व फिक्र करें। तो ये दो वाक़या तो हदीस के थे कि खुशखबरियाँ देते हैं फरिश्ते। अब सवाल लिखिए कि आपको मुझे किस काम पे खुशखबरी मिल सकती है? तो इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तखाफू वला तहज़नू वाबशिरू बिल जन्नति अल्लती كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر وہ اس پر ڈٹ گئے. ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ڈرو نہیں نہ غم کھاؤ اور اس جنت کی خوشی مناؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی. وہاں تمہارا جو جی چاہے گا تمہیں ملے گا اور جو کچھ تم مانگو گے وہ تمہارا ہوگا. یہ ہے کہانی. یہ دنیا رب چاہی تو وہ دنیا من چاہی. ہم یہاں اللہ کی مرضی سے جئیں, اللہ سے پوچھیں اللہ بتا ہم کیا کریں, وہاں اللہ ہمارے لیے چاہے گا کیا کریں. اس لیے کہ بہت ضروری ہے, ہم بہت زیادہ اس چیز کے اوپر بحث کرتے ہیں اور آج بحثیں بہت ہیں, استقامت نہیں ہے. آج اسلام کے عام رکنوں پہ بھی ہم جمنا نہیں چاہتے. مولانا مودودی کی تفسیر بہت معروف ہے, تفہیم القرآن پاکستان میں لوگ بہت پڑھتے ہیں, تو وہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ فرشتوں کا یہ نزول ضروری نہیں ہے کہ آپ کو فیل ہو, محسوس صورت میں ہو. اہل ایمان انہیں آنکھوں سے دیکھیں یا کانوں سے سنیں, ایسا نہیں ہوتا. اللہ چاہے تو کر سکتا ہے. سخت وقت میں دشمنوں کے ساتھ جب جنگ ہو رہی تھی, دل تنگ ہو رہے تھے, تو اللہ نے فرشتے نازل کیے دلوں پہ سکینت ڈالنے کے لیے, اطمینان تھا اور گھبراہٹ نہیں تھی. اسی طرح موت کے وقت فرشتے نازل ہوتے ہیں, نزول ہوتا ہے ان کا, قبر میں میدان حشر میں بھی ہو سکتا ہے. تو یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فرشتہ آیا ہے تو اب نعوذ باللہ وہ اصل فارم میں جیسے فرشتے نبیوں کے پاس آتے تھے. تو مراد یہ ہے کہ دل میں سکون ہوتا ہے, اطمینان ہوتا ہے. اب دیکھیے کہ یہ جو استقامت کی بات ہے نا, اس پہ اپنے آپ کو لائیے. ہم ذرا سی خوشی کے آنے پہ اور ذرا سے غم کے آنے پہ اپنے دین کو پیچھے کر دیتے ہیں. ایک شادی ہمارے گھروں میں آ جائے, ہم دین کو چھوڑنے پہ تیار ہو جاتے ہیں. کیوں, کیا کریں, چھوڑیں, جو ہوگا دیکھی جائے گی. خوشی بار بار تھوڑی آتی ہے. اور معاف کیجئے گا کہ ہمارا تو انداز کیا ہو گیا آج, خوشی کے موقع پہ اللہ کو ناراض نہیں کریں گے تو اور کب کریں گے. ایک ہی بیٹا ہے, اس پہ ناراض نہیں کروں گی تو کیسے کروں گی. اور اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں گے, پہلے دنیا سسرال تو خوش ہو لے, ہوتے خوش, خاندان خوش ہو لے. خاندان خوش کبھی ہوا نہیں, ہوتے. اپنی زندگی کا اصول بنائیں, الحب فی اللہ والبغض فی اللہ, اللہ کے لیے محبت, اللہ کے لیے بغض. نافرمانی سے بچیں, لا تعت علی مخلوق فی معصیت الخالق, اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جتنا زیادہ زندگی میں اللہ کی بات آگے آئے گی نا, خوشی آئے گی, سکون آئے گا. آپ لوگوں کو خوش کرنا چاہیں گے, لوگ تو کبھی نہیں ہوں گے. ناممکن ٹاسک ہے, امپاسیبل. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ راضی رہے, بندے خود بہت راضی ہو جاتے ہیں. اللہ کے ہاتھ میں ہمارے دل ہیں. اور استقامت کہ یہ جو تکلیفوں پہ صدموں پہ آپ کا دل مطمئن ہے, آج اپنے لیے خود ایک کرائیٹیرین لیں, جب میرے اوپر کوئی ایڈورس کنڈیشن آتی ہے تو میرا دل کہتا ہوتا ہے, غموں میں, بیماریوں میں, پریشانیوں میں, تکلیفوں میں, میرا دل کیسا ہوتا ہے. بس انشاءاللہ آگے ہم اور پڑھیں گے اس کے بارے میں. لیکن یہاں میں اتنی بات کہہ دوں کہ اپنے بچوں کے اتنے لاڈ نہ دیکھیے کہ کل زندگی کی گرم سرد پہ وہ برداشت نہ کر سکے. اس لیے کہ اسلام پہ ہمیشہ مشکلات آتی رہیں گی, ملک بدلیں گے, حالات بدلیں گے, نام بدلیں گے, لیکن جہاد جاری رہے گا. اللہ مسلمانوں کو آزما رہا ہوتا ہے کہ تم اپنے آپ کو ان ساری چیزوں میں رکھو. تتلی کا بچہ جب وہ اپنے شیل کو توڑ کے باہر نکلتا ہے تو اس کو بڑی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. ایک شخص دیکھ رہا تھا کہ یہ بڑی مشکل سے نکل رہا ہے, اسے جلدی سے کچھ لے کے نا چیز, تو وہ انڈے کا چھلکا توڑ دیا کہ چلو بچہ جلدی سے نکل جائے باہر. آپ کو تو کیا ہوا, نہیں, ہینڈی کیپ بچہ پیدا ہوا. تتلی کے جو بچے کی پیدائش ہوتی ہے نا, تو اس دوران اس کے اندر ایک سلائیوا ہوتا ہے, لوبریکینٹ. تو وہ بچہ جب اس छिलके के अंदर से निकलते हैं ना, तो वो जब बारीक जगह से निकल रहा होता है ना, तो वो सारा जो लिक्विड है ना वो नुचड़ नुचड़ के नीचे रह जाता है, और जब वो बिल्कुल हल्का फुल्का होता है फुदक के बाहर आ जाता है। और जब उसने उसके ऊपर आसानियाँ की तो वो सारा स्लाइवा उसके साथ गया, तो उड़ नहीं सका। एक बहुत बड़ी मिसाल है उन चीज़ों के लिए जो ये कहते हैं कि हमारे बच्चों को कोई तकलीफ़ ना आए और वो बहुत कामयाब हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बाहर की मौजों में इस्तराब नहीं है। अल्लामा इकबाल ने ये बददुआ है किस्म की, लेकिन दुआया रंग में अपने बच्चे को दी थी। आज हमारी नस्लों में इस्तराब नहीं है, इस्लाम का आज दर्द कम है। और जो बच्चे नेक हैं माशाल्लाह, जिनके हाथों में कुरान आ गए, उनके माँ बाप उनको कॉम्प्रोमाइजिंग बनाने वाले हैं। वो कहते हैं नहीं 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 चुप चुप, ऐसे नहीं तो वैसे नहीं। तो हमेशा इस्लाम पे अमल कीजिए, खुद भी और दूसरों को भी दीजिए, और आप देखेंगे कि जब आपको मुझे इन सारी चीज़ों से आशनाई होगी ना तो मज़ा आएगा। लोगों को खुश करने से ज़्यादा हम इंशाल्लाह फरिश्तों के साथ अपने ताल्लुक़ को रखेंगे। तो ये चंद बातें, जज़ाकल्ला खैर, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समील अलीम, व तुब अलैना इन्नक अंतत तव्वाबुर रहीम, व सल्लल्लाहु तआला खैरी खल्क़िही व असहाबी अजमाइन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन।